पृष्ठ संख्या 152। राष्ट्रीय उद्बोधन। योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। निराला के कविता संसार में लगातार घूमते रहने पर अक्सर एक सवाल मन में बार बार कौंधता है कि उनकी राष्ट्रीय और राजनीतिक विचारधारा क्या है, उनकी राष्ट्रीय उद्बोधन की शैली क्या है। शैली से मेरा मतलब उनकी इस तरह की कविताओं की शैली से नहीं, मेरा मतलब है राष्ट्र के सवाल को लेकर वह किस तरह की जमीन पर खड़े हैं, उनका विद्रोह, उनकी क्रांति की विचारधारा क्या है, राष्ट्र मुक्ति के सवाल को वह किस नजरिए से देखते हैं। उनकी कविताओं में भारत की प्रतंत्रता से मुक्ति का जो आह्वान मिलता है उसकी मुद्रा क्या है। अपने समय के प्रमुख विचारकों, राष्ट्रीय नेताओं तथा राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति उनका रुख क्या है, क्या वे उनसे प्रभावित हुए हैं, उन्हें अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, या उनसे किसी भी स्तर पर संलग्न या जुड़े हुए हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी प्रतिभाशाली लेखक अपने समय की समस्याओं, जीवंतताओं के भीतर से होकर ही शाश्वत और समयातीत कला मूल्यों की उपलब्धि कर सकता है। अगर यह समसामयिक नहीं है तो उसके शाश्वत होने का सवाल ही नहीं उठता। इन सवालों से फिर कुछ और सवाल निकलते हैं। भारत की जो परिकल्पना उनके दिमाग में है वह क्या है? राष्ट्रीय उद्बोधन के सिलसिले में भी क्या वे अतीत जीवी हैं? क्या वे पुनरुत्थानवादी हैं? क्या प्रतंत्रता से मुक्ति के बाद भारत की पुरानी धारणा की ओर वे लौटना चाहते हैं? क्या वे पुनर्जागरण मात्र को राष्ट्रीय उत्थान के लिए आवश्यक मानते हैं? जिस भारतीय संस्कृति की चर्चा वह बार बार करते हैं, वह भारतीय संस्कृति उनकी नज़र में क्या है? क्या उनके दिमाग में किसी हिंदू भारत की परिकल्पना है, या इस तरह की काव्य पंक्तियाँ और बिंब मात्र पृष्ठ संख्या 153 प्रतीकार्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं? जिस जाति जीवन की चर्चा अक्सर उनकी कविताओं में आई है, उस जाति जीवन से उनका तात्पर्य क्या है? क्या वह जाति का अर्थ हिंदू से करते हैं, या वर्ण व्यवस्था से, या राष्ट्रीयता से? क्या उनके दिमाग में हिंदू और मुसलमान अलग अलग जातियां हैं, या जाति उनके दिमाग में प्रत्येक भारतीय के लिए प्रयुक्त एक शब्द है? इन सवालों की रोशनी में ही निराला की राष्ट्रीय और राजनीतिक विचारधारा को समझा परखा जा सकता है। ये सवाल ऊपर से उनकी कविता या रचनात्मकता को परखने के लिए मैंने नहीं उठाए हैं, बल्कि इनका उत्स निराला की कविताएं ही हैं। उनकी रचना के मानसिक बनावट में से ही वे सवाल निकलते हैं और फैलते हुए हमें चारों ओर से समेट कर पुनः उनकी कविता और उनके व्यक्तित्व की समीक्षा तक ले आते हैं। तब लगता है कि उनके व्यक्तित्व के बाहर कुछ भी नहीं, जिसे उनकी कविता को समझने और व्याख्यायित करने के लिए जरूरी माना जाए। इसी अर्थ में वह अपने दूसरे समकालीनों से भिन्न है। यहाँ पर भी हम अपने स्थापना वाले निबंध का वह नुक्ता दोहराना चाहेंगे कि निराला में रचनात्मकता के अनेक स्वर और स्तर एक ही साथ हर समय क्रियाशील दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय उद्बोधन की उनकी अपनी मौलिक शैली उनके रचना जीवन में शुरू से ही विद्यमान है। भारत की गुलामी और मुक्ति की समस्या के प्रति वे शुरू से ही सचेत हैं। उनकी इस राष्ट्रीय चेतना का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि मातृभूमि उनकी पहली कविता है। चाहे शिल्प और शब्दबंध के लिहाज से वह कितनी ही अपरिपक्व रचना क्यों न हो, उससे उनकी स्वाधीन चेतना की झलक तो मिलती ही है। गुलामी के मुक्ति का जो आह्वान आगे चलकर शिवाजी का पत्र, जागो फिर एक बार, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा में प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त हुआ है, उस संवेदना दृष्टि का प्रारंभ उनकी शुरुआत की कुछ कविताओं में देखा जा सकता है। चूम चरण मत चोरों के तू, गले लिपट मत गोरों के तू। अपने अनुभव आक्रोश को यहाँ जिस तरह की अविधात्मक शैली में निराला ने व्यक्त किया है, उसी को परिणति आगे चलकर उपर्युक्त कविताओं में सघन ओजस्वी स्वर में हुई है। मातृभूमि कविता में भारत माता की जो परिकल्पना निराला ने की है, उनका वही निश्चल आत्मसमर्पण पूर्व प्रार्थना क्रम आगे चलकर भारत जय विजय करे और नर जीवन के स्वार्थ सकल जैसी अनेक मातृ प्रार्थनाओं में विकसित पल्लवित हुआ है। इस संदर्भ में उनकी पहली प्रकाशित कविता मातृभूमि की कुछ पंक्तियां दृष्टव्य हैं। पृष्ठ संख्या 154। बंधु तव अमल कमल, चिर सेवित चरण युगल, मुकुट शुभ्र हिमागार, हृदय बीज विमल हार, पंच सिंधु ब्रह्मपुत्र रवि तनया गंगा, विंध्य विपिन राजे घन घेर युगल जंघा, त्रिदश कोटि नर समाज मधुर कंठ मुखर आज, चपल चरण भंग नाच तारा गण सूर्य चंद्र, चूम चरण ताल मार गरज जलधि मधुर मंद्र। इसी के समानांतर मातृवंदना की उनकी प्रसिद्ध कविता भारती जय विजय करे की पंक्तियों को मिलाकर देखा जा सकता है। दोनों कविताएं एक ही मानसिक बनावट, एक ही संवेदना दृष्टि की उपज हैं, लेकिन दोनों में फिर भी काफ़ी कुछ फर्क है। दूसरी कविता में शब्द बंध सघन और संक्षिप्त होकर उसी अनुभव को और अधिक गहराई और तन्मयता से उद्घाटित करता है। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल, गर्जी तोर में सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्वतव कर बहु अर्थ भरे, तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर जल कण, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणो ओमकार। पृष्ठ संख्या 155। ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरो मुखरे। कविता की पंक्तियों और उसकी संपूर्ण बनावट में यह पहली कविता का पुनर्उल्लेखन मात्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह पहली कविता के अपरिपक्व शब्द बंध में कुछ सुधार करके दूसरी कविता बना दी गई है। दोनों की संवेदना दृष्टि में एक झीनी और बाहरी एक रूपता होते हुए भी दूसरी कविता और भी कई अर्थों में गहरी और महत्वपूर्ण है। पहली कविता प्रार्थना परक होते हुए भी भारत का एक भौगोलिक रेखांकन भर प्रस्तुत करती है। मेरा ख्याल है कि यह कविता लिखते वक्त निराला के दिमाग में रविंद्रनाथ की प्रसिद्ध कविता और आज का राष्ट्रगान जनगण मन है। रविंद्रनाथ की कविता भी एक प्रकार का भौगोलिक रेखांकन है। निराला की इस कविता से उनकी भारत की भौगोलिक धारणा ही अधिक स्पष्ट होती है। रविंद्रनाथ की कविता की तरह इसमें भी हिमालय से लेकर पंच नदियों, गंगा, विंध्याचल और समुद्र का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जो इस कविता में है वह निराला की मातृभूमि के प्रति उच्छल गर्व की अनुभूति है। वह उसे जगन महारानी कहकर उद्बोधित और गर्वित होते हैं। साथ ही यह स्वप्न परिकल्पना भी करते हैं कि सारा संसार उसके भैरव राग को सुनकर चकित है। यह गर्वोक्ति सच भले न हो, कवि की इस इच्छा का संकेतक तो है ही। इसे मात्र अपरिपक्व और भावुक अभिव्यक्ति मान लेना उचित न होगा। बहरहाल मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि इस कविता से जहाँ भारत की उनकी भौगोलिक परिकल्पना स्पष्ट होती है, वहीं भारती जय विजय करे से उनका यह भौगोलिक रेखांकन भारत के एक सांस्कृतिक रेखांकन में भी बदल जाता है। इसीलिए इन कविताओं के क्रम में यह प्रार्थना गीत या राष्ट्रगीत रविंद्रनाथ के तथाकथित राष्ट्रगान से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तथाकथित इसलिए कि अब शायद अधिकांश लोगों को यह मालूम हो गया है कि दरअसल यह कविता रविंद्रनाथ ने जॉर्ज पंचम की अगवानी के लिए लिखी थी। 1911 के दरबार में यह शायद पढ़ी जाने वाली थी या पढ़ी गई थी। चाहे ना भी पढ़ी गई हो, लिखी यह जॉर्ज पंचम की प्रशस्ति में ही गई थी। एक अधिनायक और साम्राज्यवादी शक्ति के प्रतीक पुरुष सम्राट के लिए लिखी गई इस कविता को अब हमारा राष्ट्रगीत बना दिया गया है। जिस अधिनायक के शुभ नाम से सारा भौगोलिक भारत जागता है, जिसका वह आशीर्वाद मांगता है और जिसके प्रशस्त गान गाता है, वह अधिनायक जनता का हितैषी कैसे हो सकता है? या तो सीधे सीधे किसी तानाशाह के प्रति एक डरी हुई कातर प्रार्थना का भाव है। इसी डरी हुई कातर प्रार्थना को राष्ट्रगीत का दर्जा दे दिया गया है। दरअसल सच पूछिए तो यह एक पृष्ठ संख्या 156 निहायत शर्मनाक बात है, लेकिन यहाँ की पढ़ी लिखी और अपढ़ सारी जनता जो भी उसे थमा दिया जाता है, आँख मूंद कर योगी भाव से स्वीकार कर लेती है, क्योंकि अभी भी भारतीय जनसाधारण अपने घर के चरित्र को अपने से बाहर राष्ट्र के चरित्र से नहीं जोड़ता। घर के चरित्र में वह कोई गड़बड़ नहीं आने देता, बाहर के चरित्र को वह गंभीरता पूर्वक लेता ही नहीं। जॉर्ज पंचम के लिए लिखा गया, ठीक है, लिखा होगा, राष्ट्रगीत बन गया होगा, उसे घर के चरित्र से मतलब है। राष्ट्रगीत जाए चूल्हे भाड़ में, अपनी इसी धारणा के द्वैत के कारण इस देश ने अक्सर मार खाई है, लेकिन वह द्वैत अभी भी पिटे हुए रूप में बरकरार है। अगर ऐसा ना होता तो क्या एक आदमी भी इसका विरोध न करता? निराला इस तरह की मानसिक स्थिति को कभी नहीं सह सकते थे। उनके चरित्र के अंतर्गत यह द्वैत कभी नहीं रहा। उन्होंने भी अष्टम एडवर्ड पर एक कविता लिखी, लेकिन वह अधिनायक की प्रार्थना नहीं, अपने प्रेम के लिए सिंहासन त्यागने वाले एक महान मनुष्य के बारे में कविता है। दोनों कवियों का चरित्रगत और धारणागत अंतर इसी से स्पष्ट हो जाता है। आज के एक संवेदनशील कवि को अधिनायक के प्रति लिखी गई इस कातर प्रार्थना को राष्ट्रगीत का रूप दे देने के भीतर आज का एक कटु यथार्थ भी नजर आता है। उसे लगता है कहीं प्रजातंत्र की खोल में या उसी अधिनायकत्व का लौटना तो नहीं है, जिसका डर निराला जनता पर जादू चला राजे के समाज का कहकर व्यक्त करते हैं। अपने इसी संशय भरे सवाल को उस नए हिंदी कवि ने अत्यंत मार्मिक, व्यंग्यपूर्ण और उदास शब्दों में व्यंजित किया है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवन के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। पृष्ठ संख्या 157, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। अधिनायक रघुवीर सहाय, जिसने भी 26 जनवरी का जुलूस देखा है, कविता की मार्मिकता उसके मन पर गहरा असर छोड़ जाएगी। इसके संदर्भ और इसका कटु व्यंग्य तिलमिलाकर फिर उदास कर देते हैं। भारत के भौगोलिक रेखांकन और उसके द्वारा किसी अधिनायक की कातर प्रार्थना का विचार भी निराला के दिमाग में नहीं आ सकता था। ऐसे में वे भड़क उठते, इसीलिए उनकी प्रार्थना का एक प्रकार से पवित्र और भक्तिमय आत्मसमर्पण है। निराला के दिमाग में भारत की परिकल्पना केवल एक भौगोलिक सीमा के रूप में नहीं है, भारत उनके लिए मुख्यतः एक सांस्कृतिक इकाई है, एक ऐसी सांस्कृतिक इकाई जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसकी समता और तुलना नहीं की जा सकती, जो बावजूद अनेक झंझावतों के भी अडिग और अमिट है। इसीलिए उनकी भारत की कल्पना अधिक महत्वपूर्ण है। वह इस देश को सिर्फ नदियों, पहाड़ों, समुद्रों और मैदानों की सीमा में ही नहीं मानते, यह तो एक प्रकार से किसी भी देश के नक्शे का एक प्रारंभिक रेखा चित्र होता है, जिसके आधार पर पूरे चित्र की परिकल्पना की जाती है। निराला इस इकहरे और अमूर्त रेखांकन में विश्वास नहीं करते, इसीलिए उन्होंने इससे आगे बढ़कर भारत की कल्पना एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में की है। इस कविता में प्राण प्रणो ओमकार कहकर सारे प्रार्थना परक भौगोलिक रेखांकन को कवि एक पूर्ण सांस्कृतिक चित्र के रूप में प्रतिमूर्त कर देता है। भारतीय राष्ट्र की इस सांस्कृतिक परिकल्पना को ही आगे की अपनी कविताओं में उन्होंने बार बार उठाया है, और इस प्रयत्न में भौगोलिक रेखांकन धीरे धीरे उनके लिए गौण होता गया है। भारत ही जीवन धन, ज्योतिर्मय परम रमण, सर सरिता वन उपवन। पृष्ठ संख्या 158, तपह पुंज गिरिकंदर, निर्झर के स्वर पुष्कर, दिक प्रांतर मर्म मुखर, मानो मानो जीवन। धौत धवल ऋतु के पल, संचारण चरण चपल, कारण वारण वल्कल, धारण सुकृतोच्चारण, नहीं कहीं जड़ जघन्य, नहीं कहीं अहमन्य, नहीं कहीं अस्तन्यवन्य, चिन्मय केवल चिंतन। यहाँ धीरे धीरे वह भौगोलिक रेखांकन अमूर्त होता गया है और सांस्कृतिक विशेषताओं का चित्रण महत्व लेता गया है। वह संपूर्ण भारत का एक दूसरा ही चित्र प्रस्तुत करते हैं, जहाँ सुकृतोच्चारण ही महत्वपूर्ण है, जहाँ कोई जड़ जघन्य नहीं है, अस्तन्य वन्य जहाँ नहीं रह गए हैं, केवल चिन्मय चिंतन ही जिसकी एकमात्र विशेषता है, वही भारतवर्ष मेरा सब कुछ है। वहाँ की गिरिकंदरा, निर्झर या ऋतुएँ भी मात्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि ऋतु के पल धौत धवल हैं, गिरिकांदराएँ तपह पुंज हैं और झरनों के स्वर पुष्कर हैं, पवित्र, अनामय, कल्मष रहित। इन्हीं सारी उपमाओं से निराला के सांस्कृतिक धारणाएं भी धीरे धीरे स्पष्ट होती दिखाई देती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी इस तरह की कविताओं से जो सांस्कृतिक धारणा उभर कर सामने आती है, वह अतीतोन्मुख है। उनके इस तरह के उद्गारों से कहीं कहीं उनके अतीत जीवी होने का भ्रम भी उपजता है, लेकिन वह अतीत जीवी है नहीं। दरअसल वह भारत के सांस्कृतिक अधः पतन का कोई विकल्प चाहते हैं। इस विकल्प की खोज में वह भारतीयता को सबसे पहले स्थान पर रखते हैं, इसीलिए वह बार बार भारतीय संस्कृति की उन तमाम विशेषताओं को बिंबात्मक शब्द बंध में अपनी कविता में उतारते हैं। इस विकल्प की खोज में भारत के पृष्ठ संख्या 159 गौरवमय अतीत में पैठना और वहाँ से छान कर सांस्कृतिक पुनरुत्थान के किसी विकल्प को निकालना उन्हें अधिक सुविधाजनक लगता है। सुविधाजनक भी क्यों कहें, दरअसल वह किसी दूसरे विकल्प की परिकल्पना नहीं कर पाते। इस रूप में वह पुनरुत्थानवादी और पुनर्जागरणवादी अधिक लगते हैं। कहीं न कहीं निराला अपनी इन धारणाओं की वजह से अतीत की ओर लौटते हुए भी दिखाई देते हैं। इस धरातल पर आकर वह एक परंपरावादी भारतीय कवि सिद्ध होते हैं और हरिओम तथा मैथिली शरण गुप्त के अधिक निकट लगते हैं। संस्कृति की उनकी धारणा में मिश्रित संस्कृति की वास्तविकता उनकी समझ में नहीं आती। वह अक्सर शुद्ध संस्कृति के पोषक लगते हैं। उनकी समझ में शुद्ध आर्य संस्कृति नामक कोई वस्तु है जिसे पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। उसी के अधः पतन के कारण भारतीयता का विनाश हुआ है। शिवाजी का पत्र में वह बार बार इस सनातन धर्म तथा शुद्ध भारतीयता की चर्चा करते हैं। उनकी नज़र में इसे नापाक करने वाले मुसलमान, यवन और म्लेच्छ हैं। इनके अतिरिक्त निराला धर्म, सभ्यता और संस्कृति में चाल मेल करते हुए भी दिखाई देते हैं। उनकी रचनाओं में अक्सर इनका फर्क नहीं मिलेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने बार बार जाति जीवन का भी सवाल उठाया है। एक जाति जीवन हो निरामय, वह सदाशयता प्रखर दो। दो, दो जनता जातीय देश की हो। तीन अपना जीवन आया, गई पराई छाया। मैंने बार बार उनके इस जाति शब्द को समझने की कोशिश की। जाति से उनका मतलब क्या है? क्या वह किसी भी भारतीय के लिए प्रयुक्त है? जिस तरह कि लोग जातीय संस्कृति की चर्चा किया करते हैं, मुझे लगता है कि वह भारतीय मात्र के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है। जाति का प्रथम अर्थ तो उन्होंने हिंदू से लिया है, हिंदू जाति। फिर वह वर्ण व्यवस्था पर उतर आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियाँ। इस तरह निराला ने जातियाँ शब्द का प्रयोग एक सीमित अर्थ में किया है, अतः इन कविताओं का अर्थ भी उसी अनुपात में उतना ही सीमित हो जाता है। जिस जाति जीवन के निरामय होने का वरदान निराला मांगते हैं, वह कौन सी जाति है? क्या वह संपूर्ण हिंदू जाति है या उसमें भी द्विज वर्ण है? इसी पृष्ठ संख्या 160 तरह निराला शिवाजी का पत्र में एक हिंदू भारत की परिकल्पना भी प्रकांतर से करते हैं। शिवाजी जयसिंह को उद्बोधित करते हुए एक जगह अपने पत्र में कहते हैं, फैले संवेदना, एक ओर हिंदू एक ओर मुसलमान हो, व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाए, देखो परिणाम, फिर स्थिर न रहेंगे पैर यवनों के, पस्त होगा हौसला, ध्वस्त होगा साम्राज्य। अपने पिछले निबंध में भी इस संदर्भ पर मैंने लिखा है। इसे साम्राज्यवादियों के प्रतीकार्थ में प्रयुक्त मानकर टाला या संतोष नहीं किया जा सकता। इसके पक्ष में यह तर्क भी पूरा नहीं पड़ता कि शिवाजी के चरित्र और उस समय के ऐतिहासिक अनिवार्यताओं के अनुकूल यही विचारधारा उचित जान पड़ती है। यह तर्क इसलिए कम पड़ रहा है कि निराला उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ मुसलमान विदेशी नहीं हैं, जहाँ शुद्ध संस्कृति की बात भी नहीं सोची जा सकती, या ऐसा सोचना यथार्थ को झुठलाना है। और यह भी कि मुसलमान एक ऐसा शब्द है, इतना सेंसिटिव शब्द, कि उसे प्रतीकार्थ में चाहे जितना प्रयुक्त किया जाए वह रहेगा मुसलमान ही। यवन या म्लेच्छ तो अपनी अर्थवत्ता में मुलायम और अमूर्त हो चुके हैं, इसीलिए उनमें तो यह प्रतीकात्मकता चल सकती है, लेकिन मुसलमान शब्द में नहीं चल सकती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिवाजी के प्रसंग में हिंदू मुसलमान की यह जातिगत धारणा चाहे जितनी भी सच क्यों ना हो, इसे इस रूप में कविता में लाना निहायत खतरनाक है। जिन्ना की तरह निराला भी गांधी जी पर अपने एक इंटरव्यू में यह आरोप लगाते हैं कि मैं समझता हूँ नेता हिंदुओं का नेता तो बन ही चुका था, मुसलमानों का भी बनना चाहता था। यही आरोप निराला पर भी लगाया जा सकता है कि वह हिंदुओं का कवि था। यही नहीं, इस तरह के अन्य प्रसंग भी इस कविता में जगह जगह आए हैं। एक, चाहते हो क्या तुम सनातन धर्मधारा शुद्ध भारत से बह जाए चिरकाल के लिए? दो, हिंदुओं में बलवान एक भी न रह जाए। पृष्ठ संख्या 161, हिंदुओं पर हरगिज तू कर न सकता प्रहार। तीन, और भी कुछ दिनों तक जारी रहा ऐसा यदि अत्याचार महाराज, निश्चय है हिंदुओं की कीर्ति उठ जाएगी, चिन्ह भी ना हिंदू सभ्यता का रह जाएगा। चार, धन्य होऊंगा देव द्विज देश को सौंप सर्वस्व निज। यदि यह सच है कि शिवाजी मिस्र संस्कृति या हिंदू मुसलमान एकता की बात नहीं भी सोच सकते थे, तो भी आज के संदर्भों में इस बात के विषयों को उठाना कहाँ तक संगत है? और अगर अकबर सोच सकता था तो शिवाजी क्यों नहीं सोच सकते थे? इतिहास इस बात का साक्षी है कि शिवाजी ने भी सोचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन औरंगजेब की कट्टरपंथी नीति के कारण तथा उसकी धूर्तताओं और राजनीतिक अभिसंधियों से तंग आकर उन्होंने यह जीवन समर ठान लिया था। इसके अतिरिक्त शिवाजी को जिस हिंदू जनता और जिस हिंदू संस्कृति के संरक्षक के रूप में यहाँ पेश किया गया है, वह भी पूर्णतया इतिहास सिद्ध नहीं है। यदुनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी ने 3 बार पूना जीता और तीनों बार मराठों ने खुलकर पूरे शहर में लूटपाट की। इसके अतिरिक्त मराठा सरदारों और फौजों को यह आदेश था कि वे अपने राज्य की सीमा के बाहर जाकर लूटपाट करें और सेना का खर्च निकालें। यह सवाल यहाँ बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है कि क्या मराठा साम्राज्य के बाहर सिर्फ मुसलमान ही बसते थे, या पूना जितनी बार मुगलों के अधिकार में चला जाता था क्या उतनी बार वहाँ सारी जनता मुसलमान हो जाती थी जिसे खुलकर लूटा और तबाह किया जाता था? अतः इस नज़रिए से भी इतिहास की यथार्थताओं के आधार पर भी शिवाजी का जो चरित्र इस कविता में पेश किया गया है यह सच नहीं है। दरअसल यह वह चरित्र है जो हिंदुओं द्वारा गढ़ा गया है, और यह इतिहास सम्मत उतना नहीं जितना मिथिकल है। इसमें कूटनीतिक और गुरिल्ला जनरल शिवाजी के चरित्र में हिंदू त्राता का मिथ आरोपित कर दिया गया है। निराला ने इस मिथिकल शिवाजी को ही अपनी कविता में उतारा है। पृष्ठ संख्या 162, इस कविता के पक्ष में सिर्फ यही तर्क दिया जा सकता है कि वस्तुतः यह जय सिंह को अपनी ओर फोड़ने के नुक्ते को नज़र में रख कर लिखी गई है, इसीलिए उसमें हिंदू और हिंदू संस्कृति की इतनी पुनरावृत्ति और पुनर्घोषणा है। इसकी वाग्मिता ही इसका मुख्य गुण है। लेकिन कोई भी रचनाकार इस तर्क के सहारे उन शब्दों या विचारों से कैसे बच सकता है जो उसने प्रकांतर से ही सही कविता में व्यक्त किए हैं, और निराला भी इससे बच नहीं सकते। शुद्ध संस्कृति की यह उनकी धारणा बार बार निराला की कविताओं में झनकृत होती है, इसीलिए वह अक्सर अतीत स्मरण और उसकी ऐश्वर्य चिंता में डूब जाते हैं, चाहे वह खंडहर से कविता हो या दिल्ली या भगवान बुद्ध के प्रति या सहस्राब्दी। इन सभी कविताओं के माध्यम से वह अतीत की मोहग्रस्तता का ही चित्रण नहीं करते, बल्कि उससे एक मूल्य भी ग्रहण करते हैं। उसके पुनरावतरण या उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए वह चिंतित भी दिखाई देते हैं। इस पुनर्प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति वह अत्यंत ओजस्वी और गरिमामय शब्दावली में करते हैं। उनकी ओजस्विता और वाग्मिता को इसी रूप में समझा जा सकता है। उनका द्विज संस्कार और ठेठ देहाती किसान हिंदू अभिजात्य के भीतर घिसकर इतना उदार नहीं हो पाया है कि वह स्थितियों को समझौते के ढंग से ग्रहण करे। जागो फिर एक बार भी शिवाजी का पत्र का एक अंश ही लगती है। शैली में वही ओजस्विता, गरिमा भारतीयता में वही अखंड आत्मविश्वास, वही अमृतवय पुत्र वाला बिंब पूरी कविता में संगुपित है। साधारण भारतीय के लिए यह उद्बोधन निश्चय ही एक कोलाहलपूर्ण उत्तेजना तक ले जाता है। अमृत संतान शेरों की मांद में आया है आज स्यार, पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुमार, समर सरताज, तुम हो महान, तुम सदा हो महान।